देखिए भाई किताब पर चहारों मातफ बहार्फ व ओ ताबेस्त के मकसूद बाशद ब नस्बत बा मतबूअश बाद अस हर्फ आतफ चूं जा अनी जैदन व आमरुन व हरूफ आतफ दहस्त दर फसल से वम याद को नेम इंशा अल्लाह ताला व ओ रा अतफ नस्क नीज गोयंद। भाई गुज़श्ता सबक में हमने बदल के बारे में पढ़ा था भाई, और साहिब नहमीर ने आपको बतलाया कि बदल वो ताबिया है कि जो निस्बत के जरिए मकसूद होता है, यानी एक है मतबूअ और एक है ताबिया। मतबूअ को यहां कहेंगे मुबदल मिन्हू और ताबिया को कहेंगे बदल। जाअनी जैदुन अखू का, जैदुन जो पहले आया वो है मुबदल मिन्हू और अखू का जो बाद में आया वो है बदल। और बदल में याद रखिए इन्होंने आपको बतलाया कि वो जो ताबिया होता है वो मकसूद बिन निस्बत होता है, यानी बोलने वाला जो है तकल्लुम करने वाला वो इस फेल की या इस चीज की निस्बत जो है वो बदल की तरफ करना चाह रहा है, और जो मुबदल मिन्हू है उसको वैसे ही तमहीद के तौर पर लेकर आया है। तो बाकी जितने तवाबिया हैं याद रखना, जैसे मौसूफ और सिफत आए भाई, और जैसे मुअक्कद और ताकीद आए, उनमें याद रखो जो अव्वल होता है वो मकसूद बिन निस्बत होता है। जाअनी रजुलुन आलिमुन, यहां पर ये मजीअत की निस्बत रजुल की तरफ है और आलिम उसकी सिफत है, और ये रजुल ही मकसूद बिन निस्बत है। इसी के बारे में वो बतलाना चाहता है कि ये कोई आदमी आया है, ऐसा आदमी जो कि आलिम है, आलिम है। तो वहां निस्बत के जरिए जो मकसूद होता है वो मतबू होता है। इसी तरह मसलन जा अनिल कौमु कुल्लुहुम, अल कौम जो है वो है मुअक्कद और कुल्लुहुम क्या है उसकी ताकीद, तो वहां जो मुअक्कद है वो मकसूद बिन निस्बत है और आगे उसकी ताकीद आ गई। बस बात समझ में आ गई। तो मौसूफ सिफत में मौसूफ मकसूद होता है, सिफत सिर्फ उसकी वजाहत करती है। मुअक्कद ताकीद में मुअक्कद मकसूद होता है, ताकीद आकर उसी को पक्का करती है। जबकि बदल के अंदर मामला बराक्स है, यहां पर जो ताबिया है यानी जो बाद में आया यानी जिसका नाम बदल है वो मकसूद है, और मुबदल मिन्हू मकसूद नहीं, उसको वैसे ही तमहीद के तौर पर जिक्र कर दिया जाता है। और फिर इन्होंने आपको बतलाया था कि ये बदल जो है इसकी चार किस्में हैं, एक बदलुल कुल, एक बदलुल बाज, और एक बदलुल इश्तेमाल, और एक है बदलुल गलत। भाई बदलुल गलत, बदलुल कुल के जहां बदल और मुबदल मिन हो दोनों का मदलूल एक ही हो। जा अनी जैदुन अखू का, देखो जैद जिस जात पर दलालत कर रहा है, लफ्ज जैद बोलने से जो जात आपके जहन में आती है, अखू का आपका भाई, ये बोलने से भी वही जात आपके जहन में आती है। मसलन आपके भाई का क्या नाम है जैद, तो मैं जैद कहूंगा तो भी वही आपका भाई आपके जहन में आएगा, और सिर्फ आपका भाई कह दूं तो भी वही जैद आपके जहन में आएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जात हैं। तो इसे बदलुल कुल कहते हैं कि बदल और मुबदल मिन्हू दोनों का मदलूल एक ही जात हो, दोनों एक ही जात पर दलालत कर रहे हों, और इसको बदलुल कुल कहते हैं। देखो कुल का माना सारा, सारा। जानी जैदुन अखू का, जैद जिस सारी जात पर दलालत कर रहा है, पूरी जात पर, अखू का ये भी उसी पूरी जात पर दलालत कर रहा है, तो इसको बदलुल कुल कहते हैं, यानी बदल मुबदल मिन्हू के कुल पर दलालत करता है, पूरे पर दलालत करता है। और दूसरी किस्म है बदलुल बाज, जिसमें बदल जो है वो मुबदल मिन्हू के मदलूल का जुज होता है। जुरिबा जैदुन रअसुहू, मारा गया जैद को, रअसुहू यानी उसके सर को। देखो अब ये रअसे जैद, जैद का जो सर है वो जैद का जुज है, फर्क समझ में आ रहा है भाई। तो इसमें बदल जो होता है वो मुबदल मिनहू का जुज होता है, और इसमें मैंने आपको बतलाया था कि मुबदल मिनहू की जमीर होना भी जरूरी है। जुरिबा जैदुन रअसुहू, देखा रअसुहू के साथ यह हा जमीर जो है ये जैद को राजे है, और ये बतला रही है कि ये जो जिक्र किया गया ये किसका जुज है, जैद का, या रस जैद का मुराद है, किसी और का मुराद नहीं है। तो इसमें जमीर होती है जो मुबदल मिनहू को लौटती है। तो देखो यहां रअसुहू ये जैद का जुज है, उसका बाज है, उसका कुल नहीं, इसलिए इसको बदलुल बाज कहते हैं। और तीसरा बदलुल इश्तेमाल, बदलुल इश्तेमाल मसलन सुलीबा जैदुन सौबुहू, छीना गया जैद को यानी उसके कपड़े को। देखो अब ये सौबुहू जैद का कपड़ा, ये न जैद का कुल है न जैद का जुज है, हां उससे ताल्लुक है कपड़े का कि जैद इसका मालिक है या इसको इस्तेमाल करने वाला है। तो बदलुल इस्तेमाल वो है जो मुबदल मिनहू का न कुल हो न उसका जुज हो बल्कि उससे मुताल्लिक हो। भाई फिर भी कुछ शुबा रहता है तो मैंने एक और दूसरी तारीफ की थी, उससे और वाज़े हो जाता है। बाज़ उलमा ने बदलुल इस्तेमाल की बड़ी प्यारी तारीफ की, वो फरमाते हैं बदलुल इस्तेमाल वो है कि जहां पर मुबदल मिनहू जो होता है वो फेल को कबूल नहीं करता, जहन मुंतजिर रहता है कोई और लफ्ज आना चाहिए जो फेल को कबूल करे। जैसे सुलिबा जैदुन सौबुहू, सुलिबा जैदुन कहें तो ये जैद छीनने को, सल्ब का क्या माना, छीनना, तो जैद छीनने को कबूल नहीं करता। भाई छीना तो इंसान से किसी चीज को छीना जाता है, ना कि ये कि खुद इंसान को क्या कर लिया जाए, छीन। इंसान के लिए तो अगवा का लफ्ज होता है, इंसान को, जैद को अगवा कर लिया गया। तो यहां जब सुलिबा जैदुन कहा गया, जैद को नायबुल फाइल बनाया गया, हालांकि जैद छीनने के फेल को कबूल नहीं करता, जहन मुतमईन नहीं होता कि पता नहीं क्या बात है, ये जैद को तो छीना नहीं जा सकता, इस जुमले का क्या माना है, कहने वाला क्या कह रहा है, चुनांचे जहन मुंतजिर रहता है कि आगे कोई और लफ्ज आना चाहिए जो फेल को कबूल कर ले। चुनांचे आगे जब सौबुहू लाया गया, जैद का कपड़ा, अब जहन मुतमईन हो गया कि हां जैद को तो नहीं छीना जा सकता लेकिन जैद के कपड़े को छीना जा सकता है। सूरत समझ में आ गई? तो ये दोनों तारीफें आप लगाएं, और इसकी मिसाल भी वो उस सबक में आई थी, मैंने आपसे पूछा था जाअनी जैदुन अखूहू, जाअनी जैदुन अखूहू, ये क्या है, ये जाअनी जैदुन अखूहू। बाजों ने कहा था कि ये बदलुल कुल है, बदलुल कुल, उसकी तारीफ तो इस पर लगती ही नहीं है क्योंकि वहां बदल और मुबदल मिनहू दोनों का मदलूल एक होता है, और एक है जैद और एक है अखूहू, अखू जैद, जैद का भाई, तो दोनों का मदलूल तो अलग अलग है, जैद अलग है और जैद का भाई अलग, मालूम हो ये बदलुल कुल नहीं और बदलुल जुज भी नहीं, क्योंकि जैद का भाई जैद का जुज भी नहीं और बदलुल इस्तेमाल भी नहीं। बज़ाहिर शुबा होता है शायद ये बदलुल इस्तेमाल है, इसलिए क्योंकि जैद के भाई का जैद से ताल्लुक है, भाई ना उसका कुल है ना उसका जुज है, हां उससे ताल्लुक है, लेकिन मैंने बतलाया कि ये बदलुल कि ये बदलुल इस्तेमाल भी नहीं है क्योंकि बदलुल इस्तेमाल की तारीफ इस पर सादिक नहीं आती। वो जो दूसरी तारीफ की जरा वो लगाएं कि जहां मुबदल मिन हो वो फेल को कबूल ना करता हो, और यहां क्या है फेल, जानी जैदुन अखूहू, जैद आ सकता है या नहीं, आप भी बोलते हैं या नहीं कि जैद आ गया, तो यहां तो जैद का लफ्ज़ ये जो मुबदल मिनहू है वो तो फेल को कबूल कर रहा है, हालांकि बदलुल इस्तेमाल में वो फेल को कबूल नहीं करता, जहन मुंतजिर रहता है। तो यहां जैदुन जो मुबदल मिनहू है वो फेल को कबूल कर रहा है, लिहाजा अखूहू इसमें जो बदलुल इस्तेमाल होने का शुबा था वो भी खत्म हो गया, मालूम हो ये बदलुल इस्तेमाल भी नहीं। तो अब आखिरी सूरत ये रह गई कि ये बदलुल गलत है, कहने वाला कहना तो ये चाहता था जैद का भाई आया लेकिन गलती से जुबान पर क्या आ गया, जैद आया, फौरन ही फिर उसकी इसलाह कर दी कि जैद नहीं उसका भाई आया, जा अनी जैदुन, मेरे पास जैद आया, अखूहू उसका भाई, यानी बल्कि उसका भाई आया मेरे पास। बात समझ में आ गई। और बदल की चौथी किस्म थी बदलुल गलत। भाई बदलुल गलत, चूंकि ये गलती इसका सबब बनती है, गलती हो गई इसलिए इसको लेकर आते हैं। मैं आपको कहना चाहता था मेरे पास आमर आया, लेकिन गलती से जुबान से निकल गया जैद, जानी जैदुन, मैं फौरन ही इसलाह करके कहता हूं आमरुन, जानी जैदुन आमरुन। देखा मैं कहना क्या चाहता था, आमर आया और जुबान पर क्या आ गया जैद। तो देखो ये जो आमर मैं लेकर आया ये है बदलुल गलत, जैद है मुबदल मिनहू और आमर है बदल। और इसको बदलुल गलत क्यों कहते हैं, क्योंकि गलती की वजह से इसको लाना पड़ा। पहले हमसे क्या हो गई, गलती, और उस गलती की वजह से फिर बाद में इसको लाना पड़ा, तो गलती इसके लाने का सबब बनी, इसलिए इसको बदलुल गलत कहते हैं। और मैंने आपको बतलाया था कि बदलुल बाज और बदलुल इश्तेमाल दोनों के साथ एक जमीर होनी चाहिए जो मुबदल मिनहू की तरफ लौटे। जैसे इन्होंने भी मिसाल जिक्र की, जुरिबा जैदुन रासुहू, यहां हा जमीर मुबदल मिनहू को राजे है यानी जैद को। और इसी तरह सुलिबा जैदुन सौबुहू, यहां पर भी सौबुहू के साथ हा जमीर है जो राजे है मुबदल मिनहू यानी जैद को। और फिर मैंने यह भी बतलाया था कि बदल और मुबदल मिनहू में से जो बदल है वो मकसूद है, लिहाजा उसको आला होना चाहिए। किससे, मुबदल मिन, एक है मुबदल मिनहू जो पहले आया और एक है बदल जो बाद में आया, तो मुबदल मिनहू मकसूद नहीं बल्कि मकसूद कौन है, बदल। लिहाजा बदल को मुबदल मिनहू से आला होना चाहिए, और अगर आला नहीं है तो कम अज कम बराबर होना चाहिए। लिहाजा अगर मुबदल मिनहू मारिफा हो और बदल भी मारिफा हो तो भी बात ठीक है, क्योंकि उससे आला तो नहीं लेकिन कम अज कम बराबर तो है। अगर मुबदल मिनहू भी नकेरा हो और बदल भी नकेरा हो तो भी उसके बराबर है, फिर भी मामला ठीक। मुबदल मिनहू नकेरा हो और बदल मारिफा हो, ये बेहतरीन, तो ये भी ठीक, क्योंकि इसमें बदल क्या है, मुबदल मिनहू से आला है। हां एक सूरत में मसला बनता है, जब मुबदल मिनहू हो मारिफा और बदल को क्या लाए, नकेरा, तो इस सूरत में मसला बनता है कि बदल जो मकसूद है वो तो अदना हो गया नकेरा है, और मुबदल मिनहू जो गैर मकसूद है वो मारिफा है। तो इस सूरत में फिर बदल की सिफत लाना जरूरी है, जब मुबदल मिनहू मारिफा हो और बदल नकेरा हो तो नकेरा की सिफत लाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि सिफत की वजह से उसमें तख्सीस पैदा हो जाएगी। तख्सीस का क्या माना, कि दीगर एहतमालात कम हो जाएं। जैसे मैं आपसे कहता हूं गुलाम, अब दुनिया में मसलन 1 करोड़ गुलाम हैं, तो ये गुलाम उनमें से हर एक पर बोला जा सकता है कि ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है, तो इस गुलाम में 1 करोड़ एहतमाल हैं। लेकिन इन 1 करोड़ में से फर्ज करें सिर्फ 1 लाख मोमिन हैं, तो अब मैं गुलाम की सिफत ले आता हूं, गुलाम उन मोमिन उन मोमिन गुलाम, अब ये कितने पर बोला जाएगा, अब सिर्फ ये 1 लाख अफराद पर बोला जाएगा, तो बगैर सिफत के ये बोला जा रहा था 1 करोड़ पर, और सिफत लाने के बाद अब ये सिर्फ 1 लाख पर बोला जा रहा है, तो देखो एहतमालात कम हो गए, तो ये मारिफा के करीब हो गया, क्योंकि मारिफा तो एक मुतायन जात पर दलालत करता है, और गुलाम में पहले कितने एहतमाल थे, 1 करोड़, अब कितने रह गए जब सिफत ले आया गुलाम उन मोमिनोन, 1 लाख, तो देखो ये मारिफा के करीब आ गया, इसमें एहतमालात कम हो गए, तो मारिफा तो न बना लेकिन मारिफा के करीब आ गया, तो इसको कहते हैं तख्सीस, इसमें क्या आ गई, तख्सीस, तो ये मारिफा तो न बना लेकिन मारिफा के करीब आ गया, और करीबी लश्य फी हुक्म शय होती है, तो लिहाजा ये मारिफा के ही तरह गोया हो गया, मारिफा तो नहीं लेकिन गोया यूं समझो, किसकी तरह हो गया, मारिफा, क्योंकि उसके करीब आ गया। मैंने बतलाया था जैसे बादशाह का सेक्रेटरी होता है उसका भी वही हुक्म होता है जो बादशाह का होता है, तो लिहाजा अब कुछ ना कुछ कमी की तलाफी हो गई। मुबदल मिनहू क्या था, मारिफा, और बदल तो नकेरा था लेकिन जब उसकी सिफत आ गई तो उसमें तख्सीस पैदा हो गई, और तख्सीस की वजह से वो मारिफा के करीब हो गया, तो कुछ ना कुछ क्या हो गई, تلافی ہو گئی تو اب یہ بدل بن سکتا ہے. چنانچہ اس کی میں نے مثال بھی قرآن سے ذکر کی تھی. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ. تو ان ناصیہ جو معرف ہے, جو معرفہ ہے بالف لام, یہ ہے مبدل مین ہو, اور آگے ناصیتن یہ اس سے بدل آ رہا ہے اور یہ ہے نکرہ, تو اس لیے اس کی صفت کاذبتن لائی گئی عربی اصولوں کے مطابق. بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. آگے دیکھیے بھائی, چہار و معطف بحرف, چوتھی قسم ہے توابع کی عطف بحرف. بھائی عطف بحرف بھائی, اور یہ عطف بمانے معطوف ہے, معطوف بحرف. عطف کس معنی میں ہے؟ معطوف کے معنی میں. تو معطوف بحرف یعنی حرف کے ذریعے جو معطوف ہو. آگے ایک عطف بیان آ رہا ہے, وہ بھی معطوف ہے, لیکن وہ عطف بیان ہے لیکن یہ عطف بحرف ہے, حرف کے ذریعے معطوف ہے بھائی. تو یہاں درمیان میں حرف عطف آئے گا, جبکہ آگے عطف بیان وہاں بھی عطف ہوگا لیکن وہاں درمیان میں حرف عطف نہیں آئے گا. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زیدن وعمرن, جاءنی زیدن وعمرن. دیکھو میں نے آنے کی نسبت کی زید کی طرف, اور آگے وہ حرف عطف لایا اور پھر عمر کو بھی ساتھ میں نے ملا دیا, تو اس کو عطف بحرف کہتے ہیں. واو جو ہے یہ حرف عطف ہے, اس کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے. حروف عاطفہ یاد رکھیے 10 ہیں جن کا ذکر آگے آ جائے گا. تو یہ کچھ حروف درمیان میں لا کر, یاد رکھو جو پہلے ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ, اور جو حرف عطف کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں معطوف. جاءنی زید وعمر, یہ زید جو پہلے آیا اس کو کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ. یعنی دیکھو ترجمے پہ غور کر لیں, معطوف علیہ عطف کیا گیا ہے, علیہ اس پر, اور جو حرف عطف کے بعد آئے جیسے وہ عمرن تھا, یہ عمرن اس کو کہتے ہیں معطوف, یعنی جس کا عطف کیا گیا ہے. تو جو حرف عطف سے پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ, اور جو حرف عطف کے بعد آئے وہ معطوف ہوتا ہے. اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے, توجہ ہے جی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے, جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا. اب میں عمر کے بارے میں بھی تو بتلانا چاہتا تھا کہ میرے پاس زید کے ساتھ ساتھ اور کون آیا ہے, عمر, لیکن فائل تو ایک ہی آتا ہے, فائل تو دو یا تین نہیں آ سکتے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہر فعل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فائل, اور ہر فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فائل. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور آگے فائل یا نائب فائل نہ آئے, لیکن فائل یا نائب فائل ایک ہی آئے گا, ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا اور ہمیشہ ایک ہی آئے گا, دو یا تین نہیں آ سکتے. اور فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے, لیکن آئے گا ایک ہی, آئے گا ایک ہی. اگر ضمیر آ گئی تو پھر اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل نہیں آ سکتا, اور اگر اس میں ظاہر آ گیا تو پھر ضمیر فائل یا نائب فائل نہیں آ سکتی. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس زید بھی آیا ہے اور عمر بھی, تو جاءنی زیدن, زید تو بن گیا فائل, اور میں عمر کو بھی ملانا چاہتا ہوں, اور فائل تو ایک ہی آتا ہے, دو یا تین نہیں, تو مجبور ہوا اور کوئی صورت نہیں تھی, پھر حروف عطف کا سہارا لیا جاتا ہے. اور کیسے کہتے ہیں؟ جاءنی زیدن وعمرن. اب یہ عمرن کا عطف کس پر کر دیا؟ زید پر, اور درمیان میں حرف عطف لے آیا. تو دیکھو اب بات درست ہو گئی, فائل ایک ہی رہا, کون؟ زید, اور دوسرا جس کو ساتھ میں ملانا چاہتا تھا اس کو میں نے معطوف بنا دیا. کیا بنا دیا؟ معطوف بنا دیا. اب دیکھو اب آنا دونوں کا مراد ہے, زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے, دونوں کی طرف آنے کی نسبت ہو گئی, لیکن ایک کو کیا بنایا؟ فاعل, اور دوسرے کو کیا بنایا؟ معطوف. بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا جاءنی زید وعمر, میں نے آنے کی جو نسبت کی ہے اس سے زید اور عمر دونوں مقصود ہیں, اس میں زید اور عمر दोनों मकसूद हैं, मैं दोनों की तरफ आने की निस्बत करना चाहता था लेकिन बराह रास्त मैं दो की तरफ निस्बत कर नहीं सकता क्योंकि फाइल या नाई फाइल एक आता है, दो या तीन नहीं। तो फिर वहां हुरूफ आतफ का सहारा लिया जाता है और मैंने बताया हुरूफ आतफ कितने हैं, दस हैं भाई, दस हैं, दस। तो जा अनी जैदुन व अमरुन, तो हुरूफ आतफ के जरिए मैंने अमर को भी जैद जो फाइल है उस पर उसके साथ मिला दिया। और याद रखो मातूफ जो बाद में आए उसका वही हुक्म होता है जो मातूफुन आले का था। पहले कौन आया, जैद, यह है मातूफुन आले, और जो बाद में आया वो है मातूफ। मातूफ यानी जो बाद में आया उसका वही हुक्म है जो किसका था, मातूफुन आले का। अगर मातूफुन आले फाइल हो तो मातूफ भी किसके दर्जे में, फाइल की, यानी फाइल तो नहीं है, फाइल तो सिर्फ जैद है लेकिन यह भी फाइल के दर्जे में है। किसके दर्जे में है, फाइल जैसा ही है। जैसे आने की निस्बत जैद की तरफ हो रही है ऐसे ही आने की निस्बत अमर की तरफ भी हो रही है। गोया ये आपका कलाम दो जुमलों के दर्जे में हो गया, जानी जैदुन व अमरुन। गोया आपने यूं कहा जानी जैदुन, जानी अमरुन, जानी जैदुन व जानी। देखो अगर हर्फ आतफ ना होता तो आपको दो जुमले लाना पड़ते, जानी जैदुन, फाइल एक ही आएगा वो जैद आ गया, अब अमर तो आ नहीं सकता, उसके लिए दोबारा कहोगे जानी अमरुन। तो हर्फ आतफ जो है ये कलाम को मुख्तसर कर देते हैं, अब दोबारा जानी कहने की जरूरत नहीं, वही काम किसने कर दिया, हर्फ आतफ ने, जानी जैदुन व अमरुन। ये किसके दर्जे में, दो जुमलों के दर्जे में, जानी जैदुन व जानी अमरुन, दो जुमलों के दर्जे में है। तो दो जुमले कहते तो देखो बात कितनी लंबी हो जाती, और फर्ज करो मैं बकर को भी साथ मिलाना चाहता हूं, खालिद को भी, तो मुझे यूं कहना पड़ेगा जानी जैदुन, जानी अमरुन, जानी बकरुन, जानी खालिदुन, तो कितनी बात लंबी हो जाती। हुरूफ आतफ के जरिए बात मुख्तसर हो जाती है, बस हर्फ आतफ वाओ या फा सुम्मा वगैरह में से कोई एक लाते हैं और साथ नामों को जिक्र करते चले जाते हैं, तो यूं कहेंगे जानी जैदुन व अमरुन व बकरुन व खालिदुन। देखा इसने चार जुमलों वाला काम कर दिया, हुरूफ आतफ की मदद से चार के बजाय एक ही जुमले से काम पूरा हो गया। तो याद रखो ये जो आतफ बहर्फ होता है इसमें दोनों मकसूद भी निस्बत होते हैं, जानी जैदुन व अमरुन, मैं जैद के साथ साथ अमर को भी जिक्र करना चाहता था लेकिन फाइल तो एक ही आ सकता है इसलिए मुझे किसकी मदद लेना पड़ी, हुरूफे अतफ की, तो फाइल एक ही रहा और मसला भी हल हो गया। जो बाद में वो के बाद हर्फ अतफ के बाद आए उसको क्या कहते हैं, मातूफ कहते हैं, उसको फाइल नहीं कहते। हां होता वो मातूफ अलैह ही के हुक्म में है, मातूफ अलैह अगर फाइल होगा तो मातूफ भी किसके हुक्म में, फाइल के हुक्म में, और मातूफ अलैह अगर मफूल है तो मातूफ भी मफूल के हुक्म में। मसलन मैं कहना चाहता हूं मैंने जैद की पिटाई की और मैंने अमर की पिटाई की और मैंने बकर की पिटाई की और मैंने खालिद की पिटाई की, चार जुमले मुझे बोलना पड़ेंगे, जरबतु जैदन, अब जरबत तो एक ही मफूल को नसब देता है, जैद आ गया, दूसरे को वो नसब दे ही नहीं सकता, तो जरबतु जैदन, जरबतु आमरन, जरबतु बकरन, जरबतु खालिदन, मुझे चार जुमले बोलना पड़ते। लेकिन हर्फ आतफ की मदद से मैंने एक ही जुमले में कि मैंने एक को तो मफूल भी ही बनाया और बाकियों का उसी पर आतफ कर दिया और यूं बोला जरबतु जैदन व अमरन व बकरन व खालिदन। देखा बाकी सब का मैंने उसी मफूल पर आतफ कर दिया, जरबतु जैदन, ये जैदन क्या है, मफूल भी ही, और बाकी नामों का मैंने इसी पर आतफ किया और किसकी मदद से किया, हर्फ आतफ की मदद से। या जैसे जानी जैदुन व अमरुन व बकरुन व खालिदुन, यहां सिर्फ जैद एक को फाइल बनाया क्योंकि फाइल एक ही आ सकता है और बाकी सबका मैंने उसी फाइल पर आतफ कर दिया और किसकी मदद से किया, हर्फ आतफ, हर्फ आतफ के जरिए। तो इसको कहते हैं आतफ बा हर्फ, भाई हर्फ के जरिए क्या करना, आतफ करना, और जो पहले आए उसको क्या कहते हैं, मातूफुन आले, और जो बाद में आए वो मातूफ, और मातूफ का वो ही हुक्म होता है जो किसका हो, मातूफुन आले का, यानी मातूफुन आले अगर फाइल तो मातूफ भी फाइल के दर्जे में है, किसके दर्जे में, और अगर मातूफुन आले मफूल है तो मातूफ भी मफूल के दर्जे में है। तो जा अनी जैद उन व अमर, आया मेरे पास जैद और अमर। जरबतु जैदन व अमरन, पिटाई की मैंने जैद की और अमर की। तो आतफ बहर्फ में दोनों मकसूद होते हैं, मैं जैद का आना भी बयान करना चाहता था और मैं अमर का आना भी बयान करना चाहता था, तो मैंने किसकी मदद ली? हर्फ आतफ। तो याद रखो, हर्फ आतफ के जरिए जब आतफ किया जाता है तो दोनों मकसूद होते हैं उस निस्बत के जरिए। जा आनी जैदुन, ये आने की निस्बत जैसे जैद की तरफ मैं करना चाहता था, इसी तरह जा आनी अमरुन, मैं आने की निस्बत अमर की तरफ भी करना चाहता था। तो दोनों मकसूद होते हैं उस फेल के अंदर। देखिए भाई किताब पर, चहारुम आतफ बहर्फ, चौथी किस्म जो है तवाबे की वो आतफ बहर्फ है। वह ओ ताबेस, और वो ताबे है कि मकसूद बाशद बनिस्बत, कि जो मकसूद होता है निस्बत के जरिए। आतफ बहर्फ वो ताबे है कि जो मकसूद होता है निस्बत के जरिए। बा मतबू अश, अपने मतबू समेत, अपने मतबू के साथ, यानी ताबिया भी मकसूद होता है किसके साथ? अपने मतबू के साथ, यानी वो भी मकसूद होता है, ताबिया भी और मतबू भी। बाद अज हर्फ आतफ, और किसके बाद होता है? हर्फ आतफ के बाद। फिर सुनो तारीफ, कहते हैं चहारुम आतफ बहर्फ, चौथी किस्म आतफ बहर्फ है। वह ओ ताबेस्त, और वो ताबिया है के मकसूद बाशद बनिस्बत बा मतबूअश, के जो मकसूद होता है निस्बत के जरिए अपने मतबू के साथ, यानी उस समेत। बाद अज हर्फ आतफ, किसके बाद? हर्फे किसके बाद आता है ये हर्फ आतफ? देखिए ना, वो ताबे, वो ताबे है वो जो मकसूद होता है। बाद अज हर्फ आतफ, और किसके बाद होता है? हर्फ आतफ के बाद। तो कहते हैं वह ओताबेस, वो ताबे है कि मकसूद बाशद ब निस्बत ब मतबूआश, के जो मतबू अपने मतबू समेत निस्बत के साथ मकसूद होता है। बाद अस हर्फ आतफ, हर्फ आतफ के बाद। चूं जा अनी जैदुन व अमरुन, आया मेरे पास जैद और अमर। तरकीब क्या होगी? जा आ फेल, नून विकाया, या जमीर मनसूब महलन मफूल बिही, जैदुन मरफू लफजान फाइल है, लेकिन अभी आगे जो मातूफ हैं उनको भी जोड़ना है। तो जैदुन मरफू लफजान मातूफुन आले है, ये फाइल ही। आपसे अगर कोई पूछे इस पर रफा क्यों पड़ा, आप क्या कहेंगे? फाइल है। तो जैदुन मरफू लफजान मातूफुन आले ही। वह हर्फ आतफ आमरुन मरफू लफजान, मरफू क्यों? शाबाश, ये मातूफ है। ये क्या है? मातूफ है, यहां फाइल नहीं कहना है। माना के एतबार से ये भी फाइल, लेकिन लफ्जों में ये फाइल नहीं है। तो अमरुन मरफू लफ्जन मातूफ, मातूफुन अले यानी जैद, वो अपने मातूफ यानी अमर से मिलकर ये फाइल हुआ। किसके लिए? जा के लिए। जा फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। बात समझ में आ गई। और ये मातूफ मैंने बतलाया, इसका वो ही हुक्म है जो किसका हुक्म था? मातूफुन आले। मातूफुन आले यहां फाइल है, तो मातूफ भी किसके हुक्म में? फाइल के हुक्म में। यानी जैसे आने की निस्बत जैद की तरफ हो रही है कि जैद आया है, इसी तरह आने की निस्बत अमर की तरफ भी हो रही है कि अमर भी आया है। तो दोनों मकसूद भी निस्बत हैं। दोनों क्या हैं? बाकी जितने तवाबे याद रखें, बदल में ताबे मकसूद होता है जो बाद में आता है, और बाकियों में मतबू मकसूद होता है जो पहले आता है, लेकिन आतफ बहर्फ में दोनों मकसूद होते हैं। तवज्जो है, तवाबे कुल पांच हैं, एक आतफ बयान आगे आ रहा है। तो इन पांच तवाबिया में से ये जो आतफ बहर्फ है इसमें दोनों मकसूद भी निस्बत होते हैं, ताबिया भी और मतबू भी, जबकि बाकी जो हैं उनमें सिर्फ बदल है, वहां पर ताबिया। मुबदल मिनहु और बदल में से कौन मकसूद होता है? बदल। और बाद में कौन आता है? बदल। तो यहां पर सिर्फ बदल के अंदर जो बाद में आ रहा है यानी ताबे वो मकसूद होता है। और मुबदल मिनहू को किस लिए जिक्र करते हैं? तमहीद के तौर पर। जबकि बाकी तीन किस्में जो हैं सिफत, ताकीद और आगे आने वाला है अत्फ बयान, उन तीन के अंदर मतवू मकसूद होता है। मौसूफ सिफत में से कौन मकसूद? मौसूफ। मुअक्कद ताकीद में से कौन मकसूद? मुअक्कद। और इसी तरह अत्फ बयान के आगे बयान आ रहा है वहां भी मतवू मकसूद होता है। तफसील समझ में आ गई क्या? कि आतफ बहर्फ में ताबे और मतबू दोनों मकसूद होते हैं और बदल के मामले में बदल यानी ताबे मकसूद होता है और बाकी तीन तवाबे के अंदर मतबू मकसूद होता है। इसीलिए इन्होंने इसकी तारीफ की कि ये चूंकि बाकियों से मुख्तलिफ है, यहां दोनों मकसूद होते हैं, इसीलिए कहा कि आतफ बहर्फ व ओ ताबेस्त या मकसूद बाशद ब नस्बत ब मतबूश, के जो मतबू समेत नस्बत के साथ मकसूद होता है यानी ताबे भी मकसूद होता है और मतबू भी। बाद अस हर्फ आतफ के बाद चूं जा अनी जैद उन व आमरुन व हरूफ आतफ दहस्त, और हरूफ आतफ दस हैं भाई। दर फसले सिवम याद को नेम इंशा अल्लाह ताला, दर फसले सिवम तीसरी फसल में याद को नेम हम इनको जिक्र करेंगे इंशा अल्लाह ताला। याद को नेम, याद का माना फारसी में होता है जिक्र करना। याद को नेम हम इनको जिक्र, तीसरी फसल, आगे तीसरी फसल आने वाली है भाई। ये पहली फसल चल रही है, पहली फसल इसमें तवाबिया का बयान है और फिर अगली फसल में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान आ रहा है और उससे आखिरी फसल जो है उसमें हरूफ गैर आमिला के अंदर वो जिक्र करेंगे कि हरूफ आतफ दस हैं भाई। तो कहते हैं वह हरूफ आतफ दहस्त और हरूफ आतफ दस हैं, दर फसल सिवम याद को नेम इंशा अल्लाह ताला, तीसरी फसल में हम जिक्र करेंगे इंशा अल्लाह ताला। व ओरा अतफ नसक नीज गोयंद, और इसको अतफ नसक भी कहते हैं, नीज का माना भी। व ओरा और उसको यानी इस आतफ बहर्फ को अतफ नसक नीज गोयंद, इसको अतफ नसक भी कहते हैं। आतफ ब हर्फ का दूसरा नाम क्या? आतफ नसक। नस्क सीन पर जबर पढ़ना भी सही और सीन को साकिन पढ़ना भी सही। नस्क नून सीन और काफ दो नुकतों वाला, नस्कुन, और या इसी तरह नसकुन, दोनों तरह पढ़ना सही है। और नस्क और नसक का माना है तरतीब देना, तरतीब देना, तो तरतीब देना। तो बाज जगह चूंकि ये हरूफ अतफ तरतीब का फायदा देते हैं इसलिए इनको हरूफ नसक भी कहते हैं, इसलिए इसको अतफ नसक भी कहते हैं या हरूफ नसक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन हरूफ अतफ को हरूफ नसक भी कहते हैं क्योंकि ये बास जगह पर तरतीब का फायदा देते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं जाअनी जैदुन फअमरुन सुम्मा बकरुन, ये फा भी आतफ के लिए, सुम्मा भी आतफ के लिए। जा अनी जैदुन, आया मेरे पास जैद, फा आमरुन फिर आमर, सुम्मा बकरुन फिर उसके बाद बकर, आया मेरे पास जैद फिर आमर फिर बकर। देखो यहां तरतीब का फायदा दिया इसने, मालूम हुआ आने में सबसे पहले कौन है? जैद है, उसके बाद आमर है और उसके बाद बकर है। तो बाज जगह पर चूंकि आतफ जो है तरतीब का फायदा देता है तो लिहाजा इसलिए इसको क्या कहते हैं? आतफे नसक। जबकि अगर मैं यूं कहता जानी जैदुन व आमरुन व बकरुन, अब भी तीनों तरतीब से नाम हैं, जैद पहले आमर बाद में और बकर उसके बाद, लेकिन आने में यह तरतीब जरूरी नहीं, ये वह बीच में जिक्र किया, वह याद रखो तरतीब का फायदा नहीं देता, वो सिर्फ इतना बताता है कि जैद भी आया अमर भी आया और बकर भी आया। और यह भी हो सकता है तीनों इकट्ठे आए हों, यह भी हो सकता है तीनों अलग अलग आए हों, यह भी हो सकता है आपने जैद का लफ्ज सबसे पहले बोला है लेकिन हो सकता है जैद सबसे आखिर में आया हो, लेकिन आया तो है। तो ये जो लफ्जों में तरतीब है वह के साथ खारिज में वाकये के अंदर इसी तरतीब से होना जरूरी नहीं है। इसने सिर्फ इतना बताया है जो वाव ने, जा अनी जैदुन व अमरुन व बकरुन, कि आया जैद भी है آیا عمر بھی ہے اور آیا بکر بھی ہے. باقی تفصیل ذرا بھی نہیں بیان کی کہ سارے اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے, کون پہلے آیا کون بعد میں. زید سب سے پہلے ذکر ہے لفظوں میں, لیکن ہو سکتا ہے زید سب سے آخر میں آیا ہو. عمر سب سے آخر میں آیا ذکر لفظوں میں, لیکن ہو سکتا ہے عمر سب سے پہلے آیا ہو. تو وہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ آئے یا سارے ہیں, البتہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا. لیکن بعض جگہ یہ حروف عطف ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں, جیسے فا اور سما, جاءنی زیدن فا عمرن ثم بکرن, آیا میرے پاس زید پھر اس کے بعد عمر پھر اس کے بعد بکر. دیکھا یہاں یہ فا اور ثم نے ترتیب کا فائدہ دیا, اس لیے ان حروف عطف کو حروف نسق بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ اورا عطف نسق نیز گویند, اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. نسق کا کیا معنی؟ ترتیب دینا. تو یہ بعض جگہ چونکہ ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں اس لیے ان کو حروف نسق یا عطف نسق بھی کہتے ہیں, اس لیے ان کو اس کو عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. آگے دیکھیے بھائی, پنجم عطف بیان, وہ او تابعست غیر صفت کے مطبوع را روشن گرداند. پنجم عطف بیان, پانچواں تابع جو ہے اس کا نام ہے عطف بیان. عطف بیان مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زیدن ابو عمرن, جاءنی زیدن ابو عمرن, زید جو ہے جو پہلے آیا اس کو کہیں گے معطوف علیہ, اور مبین بھی ساتھ لگا دو, یعنی معطوف علیہ مبین. جاءنی زیدن ابو عمرن, اور یہ ابو عمر کیا ہے اس کو کہیں گے عطف بیان. توجہ سے سنیں, میں بیان کرتا ہوں ساری تفصیل, بس آپ نام یاد کر لیں. جاءنی زیدن ابو عمرن, زید پہلے آیا جو متبوع ہے, اور ابو عمر بعد میں آیا یہ تابع. تو زید کو یہاں پر یہ جو عطف بیان کی بات ہے, یہاں پر جو پہلے آئے جو متبوع ہو اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے عطف بحرف میں جو پہلے آتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ معطوف علیہ. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ. اور وہاں پر جو بعد میں آتا تھا اس کو معطوف کہتے تھے, یہاں پر جو بعد میں آئے اس کو عطف بیان کہتے ہیں. جاءنی زیدن ابو عمرن, زید کیا ہے؟ معطوف علیہ, اور ابو عمرن کیا ہے؟ عطف بیان ہے. یہاں درمیان میں دیکھو حرف عطف نہیں ہے, جاءنی زیدن و ابو عمرن نہیں ہے, بلکہ جاءنی زیدن ابو عمرن, درمیان میں حرف عطف نہیں ہے. تو وہ بھی معطوف علیہ تھا لیکن وہ تھا عطف بحرف, اور یہ بھی معطوف ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف بیان کہتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ اور نیز اس میں یاد رکھیں, یہاں پر بھی یاد رکھیں, جو پہلے آئے متبوع وہی مقصود ہوتا ہے, جو بعد میں ذکر کیا وہ مقصود نہیں. اس کو صرف وضاحت کے لیے لے کر آتے ہیں. اس کو کس لیے لاتے ہیں؟ وضاحت کے لیے لے کر آتے ہیں, وضاحت. تو یہاں پر جو متبوع ہے وہی مقصود ہے. توجہ ہے؟ عطف بیان کے معاملے میں مقصود جو ہوتا ہے, مقصود بالنسبت کون ہوتا ہے؟ متبوع یا تابع؟ متبوع. عطف بیان کی بات کر رہا ہوں, عطف بیان میں مقصود کون ہوتا ہے؟ متبوع مقصود ہوتا ہے. اور آگے جو عطف بیان آیا وہ کس لیے آیا؟ اسی کی وضاحت کے لیے. جاءنی زیدن ابو عمرن, میں نے کہا میرے پاس زید آیا تھا, آپ کو پتا نہیں چلا کہ کون سا زید. زید تو دو آدمیوں کا نام ہے, فرض کریں, پتا نہیں وہ فلاں والا زید تھا یا وہ دوسرا والا زید تھا. تو میں نے آگے ابو عمر کہا, اب ان میں سے ایک کی کنیت ابو عمر ہے, ایک کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمر. جب میں نے کہا جاءنی زیدن ابو عمر, اب آپ سمجھ گئے, اچھا وہ زید جس کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمر, یعنی جو عمر کا باپ ہے. عطف بیان کے اندر وہاں مقصود متبوع ہوتا ہے یا تابع؟ متبوع, جو پہلے آئے. اور جو عطف بیان آگے لے کر آئے وہ صرف کس لیے لائے؟ وضاحت کے لیے لے کر آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی, پنجم عطف بیان, پانچواں جو ہے عطف بیان ہے, وہ او تابعیست, اور وہ تابع ہے غیر صفت, جو صفت کے علاوہ ہو, صفت نہ ہو. کہ متبوع را روشن گرداند, کہ متبوع کو روشن کر دے, یعنی اس کو واضح کر دے. उसको रोशन कर दे, यानी उसको वाजह कर दे। जैसे देखो कमरे में रोशनी होती है तो हर चीज आपको वाजह नजर आने लगती है, तो यहां फारसी में भी रोशन करने का क्या माना है, वाजह करना। तो कहते हैं अथवे बयान व ओ ताबे, अथवे बयान वो ताबिया है गैर सिफत, जो सिफत के अलावा हो, यानी सिफत नहीं होनी चाहिए कि मतबूरा रोशन गर्दानत के मतबू की वजाहत करे। चू अकसम बिल्लाही अबू हफ्सिन उमर, कसम उठा ली अल्लाह की अबू हफ्स ने, अबू हफ्स उमर ने। याद रखो ये अबू हफ्स ये कुनियत है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत क्या है, अबू हफ्स। लेकिन यह कुनियत ज्यादा मशहूर नहीं, अगर आपके सामने सिर्फ यह कहे काल अबू हफ्स तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आगे फिर उमर लाकर क्या किया गया, उसकी वजाहत कर दी गई कि अबू हफ्स से कौन मुराद हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अक्सम बिल्लाही अबू हफ्स उमर, कसम उठा ली अल्लाह की अबू हफ्स उमर ने, कसम उठा ली अल्लाह की अबू हफ्स उमर ने। यह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक देहाती आदमी आया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, तो उसने आकर सवाल किया कि हजरत मुझे एक ऊंटनी अनायत फरमा दें बैतुल माल से, मेरा घर बहुत दूर है, लंबा सफर है कई दिनों का, और मेरी जो अपनी ऊंटनी है उसकी कमर भी जख्मी है, पांव भी उसके जख्मी हैं, वो उस पर मैं सामान लाद कर और सवारी करके इतना लंबा सफर तय करना बड़ा मुश्किल है, तो मुझे कोई ऊंटनी दे, ऊंट या ऊंटनी दे दें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठाकर कहा तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो देहाती वहां से चल पड़ा और बेचारा बड़ा परेशान था कि अब इतना लंबा सफर है मैं कैसे करूंगा, चलो ऊंटनी थी ऊंटनी पर सामान भी रख लेता, सवार भी हो जाता, सफर तय हो जाता, लेकिन अब ऊंटनी भी जख्मी है। चुनांचे वो फिर किसी वक्त मदीना से निकल रहा था, जा रहा था और ये अशआर पढ़ रहा था, उन अशआर में वो ये कह रहा था कि अक्सम बिल्लाही अबू हफ्सिन उमर, कसम उठा ली है अल्लाह की अबू हफ्स उमर। हजरत उमर ने कसम उठाकर कहा था ना कि तुम झूठ बोल रहे, तो कहा अक्सम बिल्लाही अबू हफ्स उमर, कसम उठा ली है अबू हफ्स उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। खुलासा ये कि ऐ अल्लाह अगर उनसे गलती हुई है तो ऐ अल्लाह उनको माफ फरमा दे, यानी अगर उन्होंने झूठी कसम उठा ली है तो ऐ अल्लाह उनको माफ फरमा दे। चुनांचे हजरत उमर वहीं कहीं गुजर रहे थे, कोई दूसरा वक्त होगा, दूसरा वक्त होगा, हजरत उमर कहां वहां गुजर रहे थे तो उन्होंने उसकी आवाज सुन ली, तो फरमाया अल्लाहुम्मा सद्दिक सद्दिक, ऐ अल्लाह इसको सच्चा कर दे, क्योंकि उसने क्या कहा था, ऐ अल्लाह अगर झूठी कसम उठाई है तो माफ कर दे, तो कहा अल्लाह सच्चा कर दे, यानी मैंने झूठी कसम उठाई तो वाकई मुझे माफ फरमा दे अल्लाह। और फिर आपने उसकी ऊंटनी देखी, ऊंटनी तो पहले वो लेकर नहीं आया था, बायरी कहीं छोड़ी होगी, अब जब वो लेकर जा रहा है तो हजरत उमर ने भी देखा, वाकई उसकी कमर जख्मी थी और पांव भी जख्मी थे, तो हजरत उमर ने उसको बैतुल माल से दूसरी ऊंटनी दे दी। तो ये उस मौके पर ये उस देहाती ने शेर पढ़ा था, अक्सम बिल्लाही अबू हफ्स उमर, कसम उठा ली है अल्लाह की अबू हफ्स उमर ने। तो देखो अबू हफ्स ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है, लेकिन ये कुनियत मशहूर नहीं, हर एक नहीं जानता। तो आगे उमर लाकर क्या किया गया, उसकी वजाहत कर दी गई कि अबू हफ्स से कौन मुराद है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अबू हफ्स उमर मकसूद कौन है इन दोनों में से, हां हां फिर वही बात, हां अगर आप कहें उमर मकसूद है तो उमर तो दूसरे नंबर पर आया, ताबिया है, हालांकि अथवे बयान में ताबिया नहीं मकसूद होता बल्कि मतबू, अबू हफ्स मकसूद है। हां उमर ने आकर उसकी वजाहत कर दी कि अबू हफ्स से मुराद उमर हैं। वक्ते के बालम मशहूर तर बाशद, वक्ते के जिस वक्त के बालम मशहूर तर बाशद, आलम से ज्यादा मशहूर हो, मशहूर तर का क्या माना, ज्यादा मशहूर, और मशहूर तरीन ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मशहूर का माना मशहूर, मशहूर तर ज्यादा मशहूर, और मशहूर तरीन सबसे ज्यादा मशहूर। तो वक्ते के बालम मशहूर तर बाशद, जिस वक्त के आलम से ज्यादा मशहूर हो, कोई शख्स जब आलम से ज्यादा मशहूर हो और पहले कुनियत जिक्र कर दी तो फिर आलम लाकर क्या कर दिया जाएगा, उसकी वजाहत कर दी जाएगी, और इसको क्या कहेंगे, अथवे बयान कहेंगे। याद रखो एक है कुनियत, कुनियत समझ लें। कुनियत वो है कि नाम से पहले अब, उम, इबन, बिंत वगैरह का लफ्ज आ जाए। अबू आमर, अरब में कुनियत बहुत इस्तेमाल होती थी, मुअज्जज लोग अपने लिए कुनियत इख्तियार करते थे। भाई समझ में आया भाई? जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमला, देखो अबू हनीफा, देखो ये अपनी कुनियत से ज्यादा मशहूर हैं भाई। तो हालांकि उनका नाम नौमान था भाई रहमहुल्ला। इमाम आजम अबू हनीफा रहमला का असल नाम क्या था? नौमान नाम था, लेकिन वो अपनी कुनियत से मशहूर हैं। तो ये अरब में तरीका था कि अपनी कुनियत लोग रखा करते थे। तो इसमें कुनियत में मैंने बताया क्या होता है, अब, उम, इबन, बिंत वगैरह इस जैसे लफ्ज आते हैं। तो अबू हनीफा, देखो अब का लफ्ज आया शुरू में, अबू हनीफा। इसी तरह इबन उमर, हजरत अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये अपनी कुनियत से ज्यादा मशहूर हैं। इबन उमर जब भी जिक्र किया जाता है किस नाम से जिक्र करते हैं इनको? इबन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से। तो बाज औकात किसी का नाम ज्यादा मशहूर होता है, बाज औकात किसी की कुनियत ज्यादा मशहूर होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम है उमर और कुनियत क्या है? अबू हफ्स। क्या ज्यादा मशहूर? उमर। नाम ज्यादा मशहूर है, तो जो ज्यादा मशहूर हो उसको अतफे बयान बनाते हैं। अबू हफ्स चूंकि मशहूर नहीं था लिहाजा उसको मातूफुन अलैह बनाया और उमर को क्या बनाया? अतफे बयान बनाया। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके उनका नाम ज्यादा मशहूर था, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उनकी कुनियत ज्यादा मशहूर है। तो जब कुनियत ज्यादा मशहूर हो तो फिर कुनियत को अतफे बयान बनाते हैं। मसलन मैं कहता हूं काला नौमानो, काला नौमानो अबू हनीफा। देखा काला नौमानो, नौमान ने कहा, आपको पता नहीं चला कि कौन है नौमान, आगे मैंने अतफे बयान अबू हनीफा कह दिया, अब आपको बात समझ में आ गई। तो नाम या कुनियत में से जो ज्यादा मशहूर हो उसको अतफे बयान बनाते हैं, और जो कम मशहूर हो उसको पहले मातूफून अलैह बना देते हैं। तरीका समझ में आ गया? तो यह माना है चूं अकसम बिल्लाह अबू हफ्स उमर वक्ते के बालम मशहूर। जी तरकीब कर लें, अकसम बिल्लाह, अकसमा फेल और आगे अबू हफ्स ये फाइल आएगा, अकसमा फेल बा जारा लफ्ज अल्लाह मजरूर लफजन मजार मजरूर मिलकर अकसमा से फे मुतालिक, अकसमा से अबू मरफू लफजन मुजाफ, मरफू क्यों? फाइल है, शाबाश। हफ्सिन मुजाफिले है मजरूर लफजन, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर ये मातूफुन हाले, और उमर क्या है? मरफू लफजन अतफे बयान। तो यूं कह लें अबू हफ्सिन यह है मातूफुन अले मुबैन, चाहे मुबैन भी साथ मिला लें ताकि सुनने वाले को फौरन समझ में आ जाए। तो मातूफुन अले मुबैन, तो मुबैन चाहे मिलाएं या ना मिलाएं बात एक ही है। तो अबू हफ्स हुआ मातूफुन अले और उमर क्या है? अतफे बयान। तो मातूफुन अले अपने अतफे बयान से मिलकर यह फाइल हुआ अकसमा का, अकसमा फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अब ये उमर पर भी मैंने रफा पढ़ा, उमरू, इस पर रफा क्यों पढ़ा? क्योंकि अतफे बयान है, ये ताबिया है और ताबिया पर वही एराब आता है जो किस पर आए? मतबो पर। जैसे ऊपर जा अनी जैदुन व आमरुन, ये आमरुन पर मैंने क्या पढ़ा? रफा। क्यों रफा पढ़ा? क्योंकि क्योंकि मातूफुन आले पर भी क्या था? रफा था भाई। अकसमा फेल बिल्लाही जार मजरूर मिलकर मुतालिक किस से? अकसमा से। अबू हफ्सिन, अबू मरफू लफ्जन मुजाफ, हफ्सिन मजरूर लफ्जन मुजाफुन इले, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मातूफुन आले, या इसको मातूफुन आले मुबैन कहें। क्या कहें? मुबैन, मुबैन यानी जिसको जिसको बयान किया जाए। तो ये मातूफुन अले मुबैन है और आगे उमर जो है वो इसका अतफे बयान है, तो इसको मुबैन भी कह सकते हैं आप क्योंकि आगे इसका बयान आ रहा है। ये मातूफुन अले मुबैन और आगे अतफे बयान है भाई। या सिर्फ यूं कह लें कि अबू हफ्सिन ये मातूफुन अले और उमर जो है वो अतफे बयान। तो मुबैन का क्या माना, जिसका आगे जिसको बयान किया जाए, यानी जिसका आगे बयान आ रहा है। तो चूंकि आगे आत्फ बयान आ रहा है लिहाजा यहां मुबैन का लफ्ज भी बोलना चाहें आप मिला सकते हैं, या सिर्फ मातूफ अलै कहना चाहें वो भी कह सकते हैं। तो मातूफुन अलै मुबैन और उमर उसके लिए आत्फ बयान, या अबू हफ्स ये मातूफुन अलै और उमर उसके लिए आत्फ बयान। तो जिस तरह आपको आसानी हो आप दोनों तरह कह सकते हैं। मातूफुन अलै मुबैन अपने आत्फ बयान से मिलकर यह फाइल हुआ किसके लिए, अक्समा फेल के लिए। अक्समा फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तो वक्ते के अब आलम मशहूर तरबाशद, जिस वक्त के नाम से ज्यादा मशहूर हो। वजा अनी जैद उन अबू आमरीन, आया मेरे पास जैद अबू आमर। वक्ते के बकुनियत मशहूर तरबाशद, जिस वक्त के वो कुनियत से ज्यादा मशहूर हो। जानी जैद उन, मैंने जैद कहा आपको पता नहीं चला कि कौन सा जैद, आगे मैंने अबू अम्र लाकर क्या कर दी, उसकी वजाहत कर दी भाई। तो जो ज्यादा मशहूर हो उसको अथ बयान बनाते हैं, अथ बयान। बात समझ में आ गई क्या इन्होंने कहा कि अथ बयान वह ओ ताबेस्त वो ताबे है गैर सिफत, सिफत के अलावा कि मतबूरा रोशन गर्दानत, जो मतबू को क्या कर दे, वाजह कर दे, वाजह कर दे, जो अपने मतबू को क्या कर दे, वाजह कर दे। देखो अबू हफ्स ये वाजह नहीं था, उमर ने आकर क्या कर दिया, इसको वाजह कर दिया। और नीज उमर सिफत नहीं है अबू हफ्स की, सिफत तो उसको कहते हैं जो ऐसे माना पर दलालत करे जो किस में पाया जाए, मतबू में। हालांकि उमर तो ऐसे माना पर दलालत नहीं कर रहा जो किस में पाया जाए, मतबू यानी अबू हफ्स में। और इसी तरह जैदुन दूसरी मिसाल, जा अनी जैदुन अबू आमरीन, ये अबू आमर ये भी सिफत नहीं है भाई, क्योंकि सिफत तो ऐसे माना पर दलालत करती है जो किस में पाया जाए, मतबू में। बात समझ में आ गई। अच्छा, इनकी तकरीर से मालूम हुआ कि अत्फे बयान वो ज्यादा मशहूर होना चाहिए मातूफुन आले के मुकाबले में। तवज्जो है, पहले जो आए वो क्या मातूफुन आले, और जो बाद में आए वो है अत्फे बयान। इनकी तकरीर से मालूम हुआ कि जो अत्फे बयान है वो ज्यादा मशहूर होना चाहिए किसके मुकाबले में, मातूफुन आले, ताकि ये उसकी वजाहत करे। ये ज्यादा मशहूर होगा तो वजाहत करेगा, अगर कम मशहूर है तो ये वजाहत नहीं करेगा। जबकि बाज नहवी हजरात फरमाते हैं कि अत्फ बयान का ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं। तवज्जो है, अत्फ बयान का ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं। हां, मातूफुन अले और अत्फ बयान मिलेंगे तो फिर वजाहत हासिल हो जाएगी। तवज्जो है, इन्होंने तो क्या तकरीर की, अत्फ बयान को ज्यादा मशहूर होना चाहिए, लेकिन बाज नहवी हजरात क्या फरमाते हैं, ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं। हां, मातूफुन अले और अत्फ बयान जब दोनों मिलेंगे तो वजाहत हो जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। मसलन देखो, आपके दो दोस्त हैं और दोनों का नाम जैद है, तवज्जो है, दोनों का नाम जैद है, और एक दोस्त है आपका उसका नाम है अब्दुल रहमान। तीन साथी हैं, दो का नाम क्या, जैद। अच्छा, मैं कहता हूं जा अनी जैद उन, मेरे पास जैद आया था, कुछ पता चला आपको कौन सा जैद आया है, नहीं, नहीं।, नहीं देखा, क्योंकि दो का नाम है आपको पता ही नहीं चला। हां, दो जैद हैं और एक अब्दुल रहमान है, अलबत्ता एक जैद और अब्दुल रहमान, इन दोनों की कुनियत अबू आमर है। उनमें से एक जैद की कुनियत क्या, अबू आमर, और अब्दुल रहमान की कुनियत भी क्या, अबू आमर। कितने साथी हैं, कुल तीन हैं, दो का नाम जैद और एक का नाम अब्दुल रहमान, और एक जैद की कुनियत अबू आमर और अब्दुल रहमान की कुनियत भी अबू आमर। मैं आपके सामने कहता हूं जा अनी जैद उन, मेरे पास जैद आया था, कुछ आपको पता चला कौन सा जैद, नहीं। मैं आपके सामने कहता हूं जा अनी अबू आमर, मेरे पास अबू आमर आया था, आपको पता चला कौन सा अबू आमर, एक जैद है और एक अब्दुल रहमान है, कौन सा, आपको पता ही नहीं चला। हां, जब दो को मैं मिलाऊंगा और वजाहत हो जाए, मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनी जैद उन अबू आमरिन, अब वजाहत हो गई, मालूम हुआ कौन सा जैद है जिसकी कुनियत क्या है, अबू आमर थे। देखा, तो दोनों के मिलने से वजाहत हो जाए, चाहे दूसरा यानी अत्फ बयान वो मातूफुल अलैह से कम मशहूर हो जाए। बात समझ में आ गई। किताब में क्या तकरीर की, अतवे बयान किसे कहते हैं, जो मातूफुन अलैह से ज्यादा मशहूर होना चाहिए। लेकिन बाद उलमा क्या फरमाते हैं कि ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं, बराबर हो उसके या उससे कम हो फिर भी वो अतवे बयान बन सकता है, बशर्ते कि दोनों के मिलने से क्या हासिल हो जाए, वजाहत हासिल हो जाए। तो मैंने कहा जा अनी जैदुन अबू अमरीन, अब आपको पता चल गया कि कौन सा वाला जैद मुराद है। या मैं सिर्फ कह रहा था अबू अम्र, तब आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं कहता हूं जा अनी अब्दुल रहमान अबू अम्रिन, अब आपको पता चल गया कौन सा वाला अबू अम्र मुराद है, अब्दुल रहमान जो है। अच्छा, यहां एक दो बातें और मैं जिक्र कर दूं भाई। इन्होंने क्या कहा, अतफे बयान वो ताबिया है जो अपने मतबू की वजाहत करे। तवज्जो है, आखिरी चंद बातें, कीमती बातें, कि अपने मतबू की वजाहत करे और सिफत के अलावा हो। यह सिफत के अलावा क्या है, क्यों लगाने की जरूरत पड़ी सिफत के अलावा? वजह यह कि सिफत भी अपने मतबू की वजाहत करती है, सिफत भी क्या करती है, अपने मतबू की वजाहत करती है, और अतवे बयान भी अपने मतबू की वजाहत करता है। इसलिए कहा कि यह सिफत के अलावा होगा, सिफत नहीं होगी, सिफत भी अपने मतबू की वजाहत करती है। अगर सिर्फ यह कह देते अतवे बयान वो ताबे है जो अपने मतबू की वजाहत करता है, फिर तो हमें फर्क ही पता ना चलता। सिफत भी क्या करती है, अपने मतबू की वजाहत, अतवे बयान भी क्या करता है, अपने मतबू की वजाहत करता है। तो बतला दिया कि यह सिफत के अलावा होगा, और सिफत तो ऐसे माना पर दलालत करती थी जो मतबू के अंदर पाया जाए, और यह ऐसे माना पर दलालत नहीं करेगा। देखो सिफत में समझो, सिफत कैसे वजाहत करती है, याद रखो सिफत मारिफा की भी आती है और नकीरा की भी। जा अनी जैदुन्नील आलिमो, जैदुन मौसूफ, अल आलिमो उसकी सिफत, जा अनी जैदुन्नील आलिमो, और नकेरा भी हो सकता है यहां, जानी रजुलुन आलिमुन, रजुलुन नकेरा, आलिमुन उसकी सिफत भी नकेरा, और जैदुन मारिफा था और अल आलिम उसकी सिफत भी मारिफा। तो सिफत मारिफा की भी आती है, सिफत नकेरा की भी, लेकिन मारिफा में जो सिफत आती है वो उसकी वजाहत करती है। क्या करती है, मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनी जैदुनिल आलिम, आया मेरे पास वो जैद जो आलिम है। इस जैद में दोनों एहतमाल थे, आपको पता नहीं था कि पता नहीं आलिम है या आलिम नहीं। जब मैंने अल आलिम की सिफत बया साथ जिक्र कर दी, अब आप पर वाजे हो गया कि जैद क्या है, आलिम है, मालूम हुआ गैर आलिम। तवज्जो है, मैं अगर सिर्फ ये कहूं जा अनी जैदुन, मेरे पास कौन आया, तो जैद में तो दोनों एहतमाल है, हो सकता है आलिम हो सकता है आलिम ना हो, लेकिन जब मैंने अल आलिम सिफत साथ जिक्र कर दी तो वजाहत हो गई, मालूम हुआ जैद क्या है, आलिम है, गैर आलिम नहीं है। या मैं कहता हूं जा अनी जैदुनी ताजिरू, आया मेरे पास वो जैद जो ताजिर है। तो ये ताजिर में सिफत लाया किसकी, मारिफा की, और मारिफा में सिफत किस चीज का फायदा देती है, वजाहत का, वजाहत का। देखो अगर मैं सिर्फ कहता जा अनी जैदुन, आया मेरे पास कौन, जैद, तो आपको पता ना चलता कि वो ताजिर है या ताजिर नहीं। लेकिन जब मैं ताजिर ले आया, अब क्या हो गई, वजाहत हो गई, अब मौसूफ वाजे हो गया, मालूम हुआ वो कौन है, ताजिर। तो मारिफा के अंदर, तवज्जो से, मारिफा के अंदर जो सिफत लाई जाती है वो मौसूफ की वजाहत कर देती है, उसको वाजह कर देती है। मौसूफ में वसन आलिम और गैर आलिम होने दोनों का एहतमाल था, अल आलिम ने आकर गैर आलिम के एहतमाल को खत्म कर दिया। इसी तरह जानी जैदुनी ताजिरू, जैद के अंदर ताजिर और गैर ताजिर दोनों का एहतमाल था, लेकिन जब मैंने ताजिर का लफ्ज साथ जोड़ दिया, इसने गैर ताजिर के एहतमाल को खत्म कर दिया। तो मारिफा में सिफत किस लिए लाई जाती है, वजाहत के लिए, तौजीह के लिए भाई, उस ताकि वो वाज़े हो जाए। जबकि नकेरा में सिफत तख़सीस के लिए लाई जाती है, जा अनी रजुलुन मुमिनुन, आया मेरे पास ऐसा आदमी जो मोमिन, ये यूं कहें जा अनी गुलामुन मुमिनुन, मेरे पास मोमिन गुलाम आया। अब गुलाम, दुनिया में 1 करोड़ गुलाम थे, तो इस गुलाम में कितने एहतमाल, 1 करोड़, लेकिन मोमिन गुलाम तो कितने हैं, सिर्फ 1 लाख। तो जब मैंने कहा जा अनी गुलाम उन मुमिनुन, अब कितने गुलाम मुराद हो सकते हैं, कितने गुलामों पर यह सादिक आएगा, सिर्फ 1 लाख। देखा, तो नकेरा की जब सिफत आती है उसमें तख्सीस पैदा करती है, यानी एहतमालात को कम कर देती है। तवज्जो है, नकिरा में सिफत किस चीज का फायदा देती है, तख्सीस का, यानी एहतमालात को कम कर देती है। और मारिफा में जो सिफत आती है वो किस चीज का फायदा, वजाहत यानी तौजीह का हो, तौजीह लफ्ज। और मारिफा में सिफत किस चीज का फायदा देती है, तौजीह का, उसको वाजह कर देती है। तो देखा सिफत भी वजाहत करती है अपने मतबू की। जानी जैद उन्नील आलिम, आया मेरे पास वो जैद जो आलिम था, तो जैद में आलिम होने का भी एहतमाल और गैर आलिम होने का भी एहतमाल। अल आलिम ने आकर क्या बतला दिया कि आलिम है, गैर आलिम होने का एहतमाल खत्म कर दिए। देखो ये वजाहत कर दी, इसीलिए इन्होंने यहां पर कहा कि देखो फिर तारीफ देखो, आठवें बयान व ओ ताबेस, हाथवे बयान वो ताबे है गैर सिफत, जो कि सिफत के अलावा हो, के मतबूरा रोशन गर्दानत, जो मतबू की क्या कर दे, वजाहत कर दे। सिफत भी तो मारिफा में वजाहत करती है, तो सिफत को निकाल दिए कि सिफत के अलावा होगा, सिफत नहीं होगा। और सिफत किसे कहते थे, जो ऐसे माना पर दलालत करे जो मतबू में हो या मतबू के मुतालिक में हो, जबकि आठवें बयान में ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। देखिए फिर तर्जमा देख लें, कहते हैं पंजुम आठवें बयान वो ताबे गैर सिफत के मतबूरा रोशन गर्दानत, आठवें बयान वो ताबे है जो सिफत के अलावा हो और मतबू को वाजह कर दे। चूं अकसम बिल्लाह अबू हफ्सिन उमारो, कसम उठा ली अल्लाह की अबू हफ्स उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वक्ते के बालम मशहूर तर बाशद, जिस वक्त के आलम से ज्यादा मशहूर हो। वजा अनी जैदुन अबू आमरीन, वक्ते के बकुनियत मशहूर तर बाशद, जिस वक्त के कुनियत से क्या हो, मशहूर हो। तो दो मिसालें दी वही मुसन्निफ ने यहां, एक में देखो अबू हफ्स कुनियत को पहले लाए और उमर जो नाम था उसको अच्छे बयान बनाया क्योंकि नाम ज्यादा मशहूर था। और दूसरी मिसाल जा अनी जैदुन अबू आमरीन, इसमें जैद जो नाम है उसको मातूफुन आले बनाया और अबू आमर जो है कुनियत उसको अच्छे बयान बनाया क्योंकि यहां कुनियत ज्यादा मशहूर है। तो जो ज्यादा मशहूर हो, अगर नाम ज्यादा मशहूर हो तो नाम को फिर अच्छे बयान बनाएंगे और अगर कुनियत ज्यादा मशहूर हो तो फिर कुनियत को अच्छे बयान बनाएंगे, यानी बाद में उसको लाएंगे, पहले दूसरे लफ्ज को लाएंगे। मालूम हुआ इनके नजदीक आठवें बयान को मातूफुन आले से ज्यादा मशहूर होना चाहिए, जबकि बाज दीगर उलमा क्या फरमाते हैं, ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं, कम भी हो बराबर हो फिर भी वाथवे बयान बन सकता है, बशर्ते कि दोनों को मिलने से वजाहत हासिल हो जाती हो। भाई वजाहत, और याद रखो इसमें बाज उलमा बहुत बड़े बड़े नहवी फरमाते हैं कि हमारी सारी उम्र गुजर गई लेकिन हमें आथवे बयान और बदल में फर्क का पता नहीं चला, हमें आथवे बयान और बदल का पता, हमने जिस आथवे बयान की जिस मिसाल पे भी गौर किया वो हमें बदलुल कुल लगा। क्या लगा, देखो अकसम बिल्लाह अबू हफ्स उमर, अबू हफ्स जिस जात पे दलालत कर रहा है, बदल की बदलुल कुल की तारीफ लगाओ, अबू हफ्स का जो मदलूल है उमर का भी वही मदलूल, अबू हफ्स जिस जात पर दलालत कर रहा है उमर भी उसी पूरी जात पर दलालत कर रहा है। तो वो अइमा फरमाते हैं कि हमने तमाम उमर, हमें आठवें बयान और बदल में फर्क का पता नहीं चला, हमने जिस आठवें बयान में भी गौर किया वो हमें बदलुल कुल मालूम हुआ। बात समझ में आ गई, लेकिन बाद मिसालों के अंदर फर्क हो जाता है, वो इंशाल्लाह तफसील अगली किताबों में आप पढ़ लेंगे। हासिल कलाम फिर सुन लें, आज आपने दो तवाबे पढ़े, एक आतफ बा हर्फ और एक आतफे बयान। आतफ बा हर्फ इन्होंने बतलाया वो ताबिया है जो हर्फ आतफ के बाद आता है और जहां पर ताबे और मतबू दोनों मकसूद बिन निस्बत होते हैं, और इसको आथवे नसक भी कहते हैं। नसक का माना है तरतीब देना, चूंकि यह भी बाद जगह पर तरतीब का फायदा देता है यह आतफ, इसलिए इसको आथवे नसक भी कहते हैं। फिर आपने आथवे बयान के बारे में पढ़ा, इन्होंने आपको बतलाया आथवे बयान वो ताबिया है जो अपने मतबू की वजाहत करे और यह सिफत के अलावा होता है, सिफत नहीं होता, और इसके अंदर आथवे बयान का मातूफुन आले से ज्यादा मशहूर होना जरूरी है ताकि ये क्या करे, बाद में आकर उसकी वजाहत कर दे। जबकि बाज उलमा क्या फरमाते हैं, इसका ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं, हां दोनों के मिलने से वजाहत हासिल हो जाए तो फिर इस सूरत में चाहे कम मशहूर ही क्यों ना हो वो आतफे बयान बन सकता है। چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.